इस
लोके
लोके
संसार में
संसार में
विख्यातः
विख्यातः
प्रसिद्ध
प्रसिद्ध
परीक्षित
परीक्षित
परीक्षा लेने वाला
परीक्षा लेने वाला
इति
इति
इस प्रकार
इस प्रकार
यत
यत
जो
जो
प्रभु
प्रभु हे राजा
पूर्वम
पूर्वम
पहले
पहले
दृष्टम
दृष्टम
देखा जा चुका
देखा जा चुका
अनुध्यायम
अनुध्यायम
निरंतर विचारा जाकर
निरंतर विचार जाकर
परीक्षित
परीक्षित
परीक्षा लेगा
परीक्षित लेखा
नरेशु
नरेशु
प्रत्येक व्यक्ति की
प्रत्येक व्यक्ति की यह
यहाँ
यहाँ
अनुवाद इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित परीक्षक नाम से विख्यात होगा क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। तात्पर्य महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था, लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता। अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे। और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते। इस प्रसंग में श्री राजीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं चार पांच वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान की प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप्प हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया, किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियाँ मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरीय छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है।
परीक्षित परीक्षक थे हर एक व्यक्ति देखे परीक्षा की ये वाला भगवान है नहीं वो भगवान नहीं 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 तो कि भगवान व्यक्ति है, इसमें विश्वास था, क्योंकि स्वयं भगवान का दर्शन की गर्भावस्था में। तो हम उसी प्रकार भगवान का दर्शन नहीं मिला, और अगर मिला हो तो अभी याद नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जन्म भूमिष्ठ होने के पश्चात किसी का स्मरण नहीं रहते, वो गर्भावस्था कैसे थी। तो यदि हम गर्भ में, माता का गर्भ में भगवान का दर्शन मिला, तो अभी याद नहीं है। परीक्षित महाराज का याद था। तो यदि हम भगवान को अनुसंधान करेंगे, ये व्यक्ति भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, भगवान का मतलब सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान। तो कौन है सर्वशक्तिमान? केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, ऐश्वर्यपूर्ण, सुंदरता पूर्ण, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस कीर्ति पूर्ण श्रेय सुंदरता ज्ञान वैराग्य। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसे खोज के शायद हम हताशा हो जाएंगे और सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि भगवान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, या भगवान है लेकिन भगवान तो व्यक्ति नहीं है। तो हम कैसे समझ लेंगे कि कृष्ण भगवान है? श्रीमद् भागवत का प्रथम वचन में ये सिद्धांत निर्णित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। तो हमें शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। हम तो कभी भी नहीं देखा ऐसे व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण ऐश्वर्यमय है इत्यादि। तो हमें शास्त्रों से अनुसंधान लेना है कि कृष्ण भगवान है। तो शास्त्र चर्चा में बहुत प्रकार के मत, जो वो मतवादी उनको सिद्धांत बोलते हैं, बहुत मत निष्कर्ष करना संभव है, परंतु हम उस प्रकार के बड़े बड़े पंडित नहीं है जिनके विशाल शास्त्र ज्ञान है। हम तो वैसे नहीं है, हम केवल जो भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं हम मानते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि शिव भगवान है और शिव पुराण से प्रमाण देंगे, और कोई कोई बोलते हैं कि परमा है श्री दुर्गा और देवी भगवत से प्रमाण देंगे, और कोई कोई कहेंगे कि भगवान, जो भगवान शब्द जो है उसका मतलब एक व्यक्ति जो अव्यक्त से प्रकट कभी कभी होते, यदा यदा हि धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब अग्ला धर्म अग्लानी होते और अधर्म बहुत होते हैं उस समय में सृष्ट हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि इसका अर्थ है कि अव्यक्त से ही वो व्यक्ति आता है जो पहले नहीं था, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि होते हैं। श्री भगवान उवाचा, वो भगवान कहते हैं कि मैं सृष्ट हूँ। तो इस भूल धारणा भगवान स्वयं खंडन करते हैं, इस भूल धारणा को, कि अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धया, जो कहते हैं कि मैं जो व्यक्ति हूँ जो अभी भगवद गीता बोल रहा हूँ, कुछ अबुद्धिमान लोग अर्थात मूर्ख लोग कहते हैं कि मैं जो व्यक्ति हूँ अव्यक्त से व्यक्त हुआ। अभी अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, वे सब मूढ़ा है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, और जो सब बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य रामानुज आचार्य मध्वाचार्य वे वे सब बड़े बड़े पंडित है, आज पृथ्वी पर कोई पंडित नहीं है जो योग्य है शंकराचार्य रामानुज ऐसे महान महान आचार्य आचार्यों को सम्मान करना, जो उनके सामने शास्त्र चर्चा कर सकते। आजकल तो वैसे कोई पंडित नहीं है, वो सब पंडित जो थे उनके समय जब शंकर रामानुज उपस्थित थे तो सब पराजित हुए उनसे। तो शंकराचार्य प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने केवल अद्वैतवाद स्थापन किया, परंतु शंकराचार्य उनकी गीता भाषा में उनका वो भाषा में उनका प्रथम वचन में कहते हैं कि नारायण परो व्यक्त, कि वो अव्यक्त जो है उससे परम उससे अतीत है नारायण। तो भगवद गीता जो सर्व पंडित मान्य है उसमें श्री कृष्ण बार बार भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और व्यासदेव श्री भगवान उवाच लिखते कृष्ण के बारे में। तो हमारा पांडित्य वहाँ तक है, बड़ा बड़ा पंडित होना कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। गुरुकुल छात्रों को हो कुछ जानते हो क्या, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो खाली एक श्लोक सीखने का जरूरत है, ससारभवित, तो पूरा गुरुकुल में अभ्यास पूर्ण होते हैं। इस प्रकार जो बिना कुछ शंका से संदेह से पूरी तरह अस्वस्थ होते हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, वो सब कुछ जानते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। और कैसे हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सब कुछ जानते हैं? हम क्या वो कंपटीशन करेंगे, वो टीवी पर ऐसे होते नहीं, क्विज होते हाँ, कितना मचा है नवसारी का शहर में, कितने करोड़ है मचा हाँ, कोई जानते हैं? इस कोई नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते तो ये क्या है, प्रमाण है कि आपको विश्वास नहीं है कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि यो मामेव सामूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, वो सब कुछ जानते। कोई यदि कृष्ण पुरुषोत्तम है इस बात को मानते तो सब कुछ जानते। अगर आप नहीं जानते तो कितना मच्छे है नवसारे में, वो प्रमाण है कि आपको विश्वास नहीं है भगवान कृष्ण में। ऐसा है नहीं, ये जानने का जरूरत नहीं है, वो ज्ञान का जरूरत नहीं, सारा सब कुछ जानते। इसका मतलब संबंध अभिधेय प्रयोजन, हाँ हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान से, तो यही सब ज्ञान है। भगवद गीता प्रसिद्ध है ज्ञान शास्त्र, ब्रह्म विद्या, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, विद्या तो ब्रह्म विद्या है। वो सब कुछ जो विद्या का नाम में चलते वो सब माया का वैभव है, जड़ो विद्या जतो माया वैभव तोमार भजने बद्ध, अनित्य संसारे मोह जनमी जीव के घरे गधा। तो यदि हम पूरा जीवन उत्साह करेंगे सब नवसारे के मच्छा समाज, तो सब एक एक करके गिनना, तो वैसे साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं नहीं, ऐसा रिसर्च करते हैं, तो कितना मच्छा है नवसारे में, तो उससे कुछ लाभ नहीं होते। माया का वैभव, जोरो विद्या माया का वैभव है, तो आप नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। वो क्या है, वो सर्टिफिकेट है कि आप बहुत बहुत बड़ा मूर्ख हो, सब मूर्ख समाज में प्रथम श्रेणी में हो, क्योंकि भगवान वो व्यक्ति को यथार्थ बुद्धि प्रदान किया जिसका यथार्थ प्रयोग है मतपरतराम नान्यत किंचित अस्ति तन्न, यही वचन को समझना। लेकिन टेलीस्कोप से देखना, माइक्रोस्कोप से देखना, ऐसे जीवन तो निष्फल बने ऐसे। तो विद्या है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या का सर्वोत्तम स्तर है भगवान को परम ब्रह्म को मानना, जैसे गीता में भगवद गीता में सब कुछ है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, कौन हाँ कौन है परम ब्रह्म, कोई जानते है गुरुकुल? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य तो ब्रह्म ज्ञान है कुछ क्या? परम ब्रह्मा कौन? तुम? नहीं नहीं, इतने सा जानते तो अच्छा है। परम ब्रह्मा कोई जानते? कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। क्यों कृष्ण को मानते परम ब्रह्म? कुछ लोग कहते नहीं स्वामी नारायण, और स्वामी नारायण का युग हो गया लग रहा है अभी, क्यों वो बाबा साई बाबा का युग आया है नहीं? वो जूना भगवान है। हाँ अभी कौन साई बाबा? गुजरात में हर एक घर में साई बाबा का तस्वीर है, हमारे इस्कॉन के भक्त के घर के अलावा, और शायद स्वामी नारायण उनके घर में नहीं है। लगते तो आप डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नहीं तो लगभग सभी घर में। तो क्या प्रमाण है कि साई बाबा भगवान है? प्रमाण ये शब्द भी लोग नहीं जानते कि भगवान शास्त्र कौन है भगवान, तो शास्त्र प्रमाण से समझना चाहिए। इसके बारे में लोग का कुछ भी धारणा नहीं है। वो भगवान है कैसे मालूम है? सब ऐसे बोलते हैं, सब ऐसे बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? तो सब मूर्ख चुनाव करते हैं, चुनाव भी नहीं करते। अगर चाहते हो तो साईं बाबा का तस्वीर रख दो, नहीं चाहते हो तो जो भी आप रखना चाहते हैं, जो भी तस्वीर। तो कितना महत्व है भगवत तत्व ज्ञान, तो लोग नहीं जानते। धर्म को एक बहुत हल्का विषय को ऐसे ही बनाया। धर्म का मतलब क्या है? तो दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा का मतलब शराब पीना चाहिए, और कैसे हो गया? तो सरस्वती तो छात्रों को आशीर्वाद देती है, और छात्रों तो यम नियम सम सब पालन करने है। शराब फिर छात्रों के लिए तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण है तो शराब नहीं पी सकते पूरे जीवन में, और छात्रों कैसे ज्ञान अर्जन करेंगे यदि शराब पीते? हाँ कैसे संभव होगा? शराब क्या वो ज्ञान का नाशक है, चरित्र का नाशक है? वो सरस्वती तो संस्कृति संस्कृति की देवी है, अधिष्ठात्री है। विद्या और संगीत के अधिष्ठात्री। विद्या का मतलब जो विद्या तो संस्कृत भाषा में होती है, तो संस्कृति के अधिष्ठात्री है श्री सरस्वती देवी। वो सरस्वती का नाम है शराब पीते और बंदर जैसे नाचते और जबरदस्त से जनता लोग से पैसा निकालते, उसलिए तो कैसे सब कुछ विपरीत हो गया इस कलि युग में। इसलिए गुरुकुल शिक्षा होने चाहिए, जिससे वो जीवन का प्रथम भाग से छात्रों शिक्षा मिल सकते कृष्ण भगवान के बारे में। तो आजकल क्या है? तो कृष्ण भगवान है इसके बारे में किसी भी कुछ धारणा नहीं है, और टीवी और इंटरनेट से, छोटा वायस से और सब व्यसन सीखते। तो क्या हल है? तो हमें क्या करना है? जबरदस्त से प्रचार करना चाहिए। हाँ, तलवार लेके, कल की भगवान का समय आया नहीं है, लेकिन अगर वैसे चलेगा तो लगते ही तो कल की भगवान तो देखेंगे, मेरा समय नहीं आया लेकिन लगते ही मुझे जाना है। तो कितने बड़ा ये सब मूर्खों का संहार करना, उनका उनको अनुग्रह करना है, जिससे और ज्यादा पाप नहीं करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं कहेंगे। तो तुरंत उनका दुष्ट जीवन समाप्त करना उनके लिए अनुग्रह है, जिससे और ज्यादा पाप नहीं करेंगे। और विकल्प उपाय है हरे नामा एव केवलम कलौ नास्त्रैव गतिरन्यथा। असुरिक प्रवृत्ति संहार करना हरि नाम से। ये अभी कल्कि का समय नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का समय, कृष्ण कीर्तन का समय, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निष्ठा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा फैलाना है, ये उपाय है। कल की भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि शास्त्र में वो लिखते है कि कितने 427,000 वर्षों के पश्चात आएंगे। और भगवान तो जब भी आना चाहते तो आ सकते, परंतु सामान्यतः तो शास्त्र में जो है तो भगवान भी मानते। तो भगवान उपस्थित है अभी, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कभी कभी लोग पूछते नहीं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्य। तो भगवान कहाँ है? धर्म ग्लानि हो गए बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं। हाँ, तो भगवान आया है कैसे? कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतरित हुए नाम के रूप में, और नाम होते हुए सर्व जगत निष्ठा। और भगवान कृष्ण का नाम, नाम होते इससे पूरा जगत का निष्ठा हो सकते। तो प्रचार करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार, विशेषकर भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। कितने बार श्रील प्रभुपाद भारतीय लोग के बीच में इस वचन बताए कि जिनके भाग्य है भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त किया, तो उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सार्थक होने का मतलब पैसा ज्यादा है। पटेल की बड़ी इच्छा होना है सार्थक। चैतन्य महाप्रभु हमको बताए सार्थक हो, सार्थक अर्थ का मतलब पैसा, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा कमाना है। और फिर करो पर उपकार, तो जो बड़ा धनी है तो पर उपकार हॉस्पिटल, वहाँ क्या अग्रवाल कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज तो अग्रवाल तो सार्थक हो गया, मारवाड़ी पटेल तो गुप्ता, सब सबके जीवन के एक ही अर्थ है, अर्थ अर्थ ज्यादा संग्रह करना। तो संग्रह करके तो कॉलेज स्कूल ऐसे बनाते और ऐसे कुछ करते जिससे वो टैक्स से मुक्त होंगे, तो ये पूरा पर उपकार नहीं है, तो ऐसे अलग ढंग से तो टैक्स से मुक्त होते। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सार्थक सा अर्थ जीवन सार्थक बनाने का मतलब का अर्थ है कृष्ण भक्ति करना। चैतन्य महाप्रभु का जीवन सार्थक था कैसे, हरि नाम से। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बोले नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, नाम उपदेशे थार सर्वजन। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे किए कृष्ण नाम, और कुछ दिन के बाद गुरु के चरण के समीप जाकर गुरु के चरण पर निवेदन किया कि आप मुझे हरिनाम कीर्तन करना उपदेश दिया, उससे मैं पागल हो गया हूँ। कीबा मंत्र दिल गोसाई कीबा थार बल, जापेते जापेते मंत्र होइलम पागल, चैतन्य महाप्रभु बोले। तो सामान्यतः गुरु से मंत्र लेने से हम क्या आशा करते, तो मन शांत स्थिर हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये मंत्र आपसे लेने से मैं एकदम पागल हो गया, मन तो शांत नहीं हो गया, मैं बिल्कुल पागल हो गया। ईश्वरपुरी बताया इनके गुरु, अच्छा है अच्छा है, आपका जीवन तो सार्थक हो गया है, ऐसे फल होना चाहिए। एवं व्रता प्रिया नाम कीर्त्य, एवं व्रता सप्रिय नाम कीर्त्य जातानुराग चित्त द्रुत उच्चाय हसत्यति रोदति गायति गायति उन्मादव नृत्यति लोक बाह्यः। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को यही श्लोक जो ईश्वरपुरी बताया कि श्रीमद् भागवत के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु को सिखाया कि जो वो प्रिय नाम कृष्ण का नाम जप कीर्तन करते हैं और उससे उन्मादवान पागल होते और रोते हैं चिल्लाते हैं गाते हैं नाचते हैं नाम का प्रभाव से, और दूसरे लोग जो कहते हैं उसको कुछ खेल नहीं देते हैं, तो वो व्यक्ति का जीवन की पूरा संसिद्धि हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन सार्थक हुआ हरि नाम से, और चैतन्य महाप्रभु पर उपकार किए दूसरों को, हरि नाम सिखाना। और चैतन्य महाप्रभु इनके दो प्रथम प्रचारक गण को बताए। इसके पहले कुछ कहना है कि चैतन्य महाप्रभु निमय पंडित उस समय उनका प्रसिद्ध नाम था निमय पंडित। तो नवरी मायापुर धाम में श्रीवास ठाकुर का घर में प्रतिदिन रात को प्रति रात कीर्तन किए थे इनके प्रिय भक्तों के साथ। और एक दिन आए जिसमें चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन का प्रचार का आरंभ करना चाहते। तो चैतन्य महाप्रभु इनके दो मुख्य सेनापति हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु हरिदास और नित्यानंद को बोला बताए कि सर्वत्र मेरा आज्ञा प्रकाश करो। वो आज्ञा क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि प्रत्येक घर जाकर मेरा आज्ञा सबको बताओ, या यही भिक्षा मांग लो। वो भिक्षा क्या है? वो भिखारी लोग घर घर जाकर हर एक घर से कुछ भिक्षा मांगते, तो ये भिक्षा मांगना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास को बताए। तो सबके भिक्षा मांग लो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, तो कृष्ण नाम सबको बताना, कृष्ण नाम कहना। फिर लोग पूछेंगे क्यों 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 हम कृष्ण नाम ग्रहण करेंगे? तो फिर हमें कृष्ण शिक्षा भी करना चाहिए जिससे हम यथार्थ उत्तर दे सकेंगे। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं पहले से मैं साईं बाबा का कीर्तन करता हूँ, तो क्यों मैं कृष्ण साईं बाबा सब एक ही है, तो अगर कोई भगवान को साईं बाबा बोलना चाहते हैं तो चलेगा, अगर कोई कृष्ण बोलना चाहिए चलेगा। तो सब ये मायावाद से ऐसे लोग ऐसे कहते हैं कि परम सत्य का कोई निश्चित रूप और नाम नहीं है, तो अगर परम सत्य को साईं बाबा बोलना चाहते तो ऐसे, अगर कृष्ण को ठीक है जो भी चाहते। तो इसलिए हमें शिक्षित होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और सब भगवान नहीं है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो यही प्रचार हमें करना चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का काल है, तो हम सब बहुत भाग्यवान है कि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्ष से सिंचित हो गया। तो जिससे दूसरों भी भाग्यवान होंगे, हमें प्रयास करना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, तो कितना भाग्यवान है लोग तो नहीं जानते, उनका जीवन सार्थक नहीं है। तो बहुत बड़ा अमीर होते हुए भी तो चैतन्य महाप्रभु का विचारधारा में भाग्यहीन है यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते। उनका जीवन निरार्थक है। नहीं नहीं मेरा पास बहुत काफी धन संपत्ति है, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, दूसरा वहाँ, निरार्थ निरार्थ है, छाया बाजे जैसे, अभी देखते हो चला गया, नहीं है। तो वास्तविक अर्थ है ये बात समझ, मैं कृष्ण का दास हूं। कितने जन्मों के पश्चात एक व्यक्ति भाग्यवान हो सकते, ये सरल बात को मानना, मैं कृष्ण का दास हूं। बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात एक व्यक्ति जो विशेषकर हर एक जन्म में जीवन उत्साह करते परम सत्य का अनुसंधान करने में, तो वैसे वैसे व्यक्ति बहुत जन्मों के पश्चात साक्षात्कार मिलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और चैतन्य महाप्रभु सबको इस ये ज्ञान परिवेशन करते, तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में प्रयास करना चाहिए, वही ज्ञान परिवेशन करना। तो ये प्रकार महोत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव एक विशेष अनुष्ठान है प्रचार का, जिससे लोग प्रबुद्ध होंगे कि कृष्ण जगन्नाथ है, कोई दूसरा जगन्नाथ नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक ही नाथ है कृष्ण। तो यही प्रचार हम करना चाहते। हरे कृष्ण।
परीक्षित महाराज को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया और उनके संस्कार में ऐसी छाप बनी कि वो कभी उनको भूल नहीं पाए। भागवत में वर्णन आता है कि हम सब भी पुण्य आत्मा जो होते हैं माता के गर्भ में,
उसके बारे में बोला ना वो
छाप
प्रवचन के पहले और प्रथम भाग में कि कुछ पुण्य आत्मा भगवान का दर्शन मिलते गर्भ में लेकिन भूलते। जन्म लेने से वो डर जो होते उससे सब भूल जाते। तो सब जो भगवान को देखते तो याद नहीं करते। चेतना में है वो संस्कार लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में, इसलिए वो एक व्यक्ति यदि उनकी चेतना में सूक्ष्म रूप में भागवत अनुकूल संस्कार है तो भक्तों का संग मिल के ही तो फिर आपने आप जैसे प्रबुद्ध होते। गीता में श्री कृष्ण कहते अथवा योगी नाम एवं वो क्या है कि वो जो पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया है तो अगला जन्म में तो अपने आप वो संस्कार प्रकट होते। वो श्लोक क्या है? पूर्वाभ्यास नैनाव, अभी मुझे याद नहीं है। परीक्षित तो साधारण जीव नहीं थे, अर्जुन के नाती हो। भगवान कृष्ण से चुना हुए पृथ्वी के राजा होना, कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमद् भागवत के आदर्श श्रोता। तो सुखदेव का श्रीमद् भागवत परिवेशन करने के सभा में बहुत महान ऋषि योगी साधु उपस्थित थे, परंतु राजा परीक्षित मुख्य श्रोता थे। विशेषकर परीक्षित को सुनाया सुखदेव, जो साधारण जीव नहीं थे। अधिकार के अनुसार हम संस्कार मिलते, हम भगवान की कृपा मिलती है। और कुछ
लिखते हैं कि मेरे पिताजी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने मुझे श्री राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे और मैं बच्चे की तरह उसको खेल रहा था। तो काफी कभी कभी कोई भक्त पूछते कि जिस प्रकार श्री प्रभुपाद के पिताजी ने उनको विग्रह दिया और फिर खेल खेल में वो कृष्ण भक्त बने, तो हम भी ऐसे बच्चे को दे सकते हैं।
इसके बारे में श्रील प्रभुपाद का विशेष उपदेश है एक पत्र में कि बच्चों को विग्रह नहीं देना, क्योंकि वे नहीं जानते कैसे अच्छी तरह व्यवहार करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।